अध्याय 23 परमेश्वर की दाख की बारी। यह अध्याय मत्ती 21 आयत 33 से 44 पर आधारित है। यहूदी राष्ट्र। दो बेटों के दृष्टांत का पालन दाख की बारी के बाद किया गया था। एक में मसीह ने यहूदी शिक्षकों के सामने आज्ञाकारिता के महत्व को निर्धारित किया था, दूसरे में उसने इज़राइल पर दी गई समझद आशीषों की ओर इशारा किया और इसमें परमेश्वर के उद्देश्य की महिमा को स्थापित किया जो आज्ञाकारिता के माध्यम से उन्होंने पूरा किया होगा। भविष्य से पर्दा हटाते हुए उन्होंने दिखाया कि कैसे अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल होने के कारण पूरा देश उनके आशीर्वाद नष्ट कर रहा था और खुद को बर्बाद कर रहा था। एक निश्चित गृहस्वामी था, मसीह ने कहा, जिसने एक दाख की बारी लगाई, उसके बारे में एक दौर की शुरुआत की और उसमें एक शराब बनाने की जगह तैयार की और एक टीला बनाया और उसे किसानों के हवाले किया और दूर देश में चला गया। इस दाख की बारी का वर्णन यशाया भविष्यवक्ता ने दिया है। अब मैं प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गाना गाऊंगा। एक अति टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम प्रकार की दाख की बारी लगाई। उसके बीच में उसने गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। यशाया 5:1-2। मालिक जंगल से जमीन का टुकड़ा चुनता है, वो बाड़ लेता है, साफ करता है और उसे तैयार करता है। उसे अपनी पसंद की लताओं के साथ रोपता है, एक समृद्ध फसल की उम्मीद करता है। जमीन की यह साजिश उसकी बेकार की श्रेष्ठता में है। वो उसे उसकी देखभाल के परिणाम और उसकी खेती में परिश्रम दिखाने के द्वारा ऐसे लोगों को चुना है जो मसीह के द्वारा शिक्षित और शिक्षित होंगे। भविष्यवक्ता कहते हैं, मेजबानों के ईश्वर के दाख की बारी इज़राइल का घर है और यहूदा के लोग उसका सुखद पौधा है। यशाया 5:7। इन लोगों के ऊपर परमेश्वर ने महान विशेषाधिकार दिए थे। उन्हें प्रचुर मात्रा में भलाई के लिए आशीर्वाद दिए। उन्होंने फल की पैदावार करके उन्हें सम्मानित करने के लिए उनकी तलाश की। उन्हें अपने राज्य के सिद्धांतों को प्रकट करना था। पतित दुष्ट दुनिया के बीच में ईश्वर के चरित्र का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। ईश्वर की दाख की बारी के रूप में वे पूरी तरह से बुतपरस्ती दुष्टता से अलग फल का उत्पादन करने के लिए थे। हिंसा और अपराध, लालच, उत्पीड़न और भ्रष्ट व्यवहार बिना वे संयम के लिप्त थे। अधर्म, पतन और दुख भ्रष्ट वृक्ष के फल है। ईश्वर के रोपण की बेल पैदा होने वाले फल के रूप में चिन्हित विपरीत हैं। यह यहूदी राष्ट्र के विशेषाधिकार के रूप में ईश्वर के चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ये मूसा को पता था। मूसा की प्रार्थना के जवाब में, मुझे तेरा गौरव दिखाऊं, प्रभु ने वायदा किया, मैं तुम्हारे सामने से अपना सब कुछ गुजार दूंगा। निर्गमन 33:18-19। और प्रभु उसके सामने से गुजरा और घोषणा की, प्रभु, 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 दयालु और अनुग्रहकारी, सहनशीलता करने वाला, अच्छाई और सच्चाई प्रचुर मात्रा में, हजारों लोगों के लिए दया रखते हुए, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करते हुए। निर्गमन 34:6-7। यह वो फल था कि प्रभु का कानून परिपूर्ण है, आत्मा को परिवर्तित कर रहा है। भजन संहिता 19:7। यहूदी राष्ट्रों के माध्यम से सभी लोगों को समृद्ध आशीर्वाद प्रदान करना ईश्वर का उद्देश्य है। इज़राइल के माध्यम से जिस तरह से पूरी दुनिया ने भ्रष्ट आचरण के प्रकार के लिए तैयार किया जाना था, दुनिया के राष्ट्रों ने भ्रष्ट आचरण के माध्यम से परमेश्वर के ज्ञान को खो दिया था। फिर भी उनकी दया में ईश्वर ने उन्हें अस्तित्व से नहीं निकाला। उसने उन्हें अपने कलीसिया के माध्यम से उससे परिचित होने का अवसर देने के लिए पीछा किया। उन्होंने अपने लोगों ईश्वर को नैतिक छवि को बहाल करने का माध्यम होना चाहिए। यह इस उद्देश्य को सिद्धि के लिए था कि परमेश्वर ने इब्राहिम को अपनी मूर्ति पूजा से बाहर बुलाया और उसे कनान देश में रहने के लिए उकसाया। मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, उसने कहा, और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम महान करूंगा और तुम पर आशीर्वाद बना रहेगा। उत्पत्ति 12 आयत 2। अब्राहम, याकूब और उसके वंशजों को मिस्र में लाया गया कि उस महान और दुष्ट राष्ट्र के बीच में वे परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को प्रकट कर सके। यूसुफ की अखंडता और पूरे मिस्र के लोगों के जो वचन को पाने में उनके अद्भुत काम मसीह के जीवन का प्रतिनिधित्व थे। मूसा और कई अन्य लोग ईश्वर के साक्षी थे। मिस्र से इज़राइल को आगे लाने में प्रभु ने फिर से अपनी शक्ति और उसकी दया प्रकट की। बंधन से उनके उद्धार में उनके अद्भुत काम और जंगल के माध्यम से उनकी यात्रा में उनके साथ काम करना अकेले उनके लाभ के लिए नहीं था, ये आसपास के देशों के लिए एक वस्तुपाठ के रूप में होना। प्रभु ने स्वयं को सभी मानव अधिकारों और महानता से ऊपर के ईश्वर के रूप में प्रकट किया। अपने लोगों की ओर से उन्होंने जो संकेत और चमत्कार दिए वो प्रकृति पर और प्रकृति की पूजा करने वालों में सबसे बड़ी शक्ति थी। परमेश्वर ने मिस्र की गौरवपूर्ण भूमि के माध्यम से चलाया क्योंकि पिछले दिनों में वो पृथ्वी के माध्यम से जाएगा। आग और तबाही, भूकंप और मौत के साथ महान मैं हूं ने अपने लोगों को छुड़ा लिया। वो उन्हें बंधन की भूमि से बाहर ले गया। उसने उन्हें और उस बड़े भयानक जंगल में से ले आया जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है। व्यवस्था विवरण 8 आयत 15। उसने उन्हें चकमक पत्थर की चट्टान से पानी निकाला और स्वर्ग का मन्ना खिलाया। भजन संहिता 78 आयत 24। मूसा ने कहा, क्योंकि यहोवा का अंश गरजने वालों से भरी मरुभूमि में पाया, उसने रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के नाई उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेले ही उसकी अगुवाई करता रहा। व्यवस्था विवरण 32 आयत 9-12। इस प्रकार वो उन्हें अपने पास ले आया और वे परम प्रधान की छाया के नीचे निवास कर सकते थे। यीशु अपने जंगल में भटकते हुए मसीह के बच्चों का नेतृत्व करने वाला था। दिन के हिसाब से बिजली के खंभे और रात तक आग के खंभे में बंधा हुआ उसने उनका नेतृत्व किया और उनका मार्गदर्शन किया। उसने उन्हें जंगल की परिधि के प्रति संरक्षित किया। वो उन्हें वादे की भूमि में ले आया और इन सभी राष्ट्रों की दृष्टि में जिन्होंने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इज़राइल को अपने चुने हुए लोगों के रूप में स्थापित किया। इसके लिए लोगों को ईश्वर के वचनों के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। उनके कानून, सत्य, न्याय और पवित्रता के चिरस्थायी सिद्धांतों का पूर्व धारणाओं के बारे में उनसे बचाव किया। इन सिद्धांतों का पालन करना उनकी सुरक्षा करना था, क्योंकि ये उन्हें पापी प्रथाओं द्वारा खुद को नष्ट करने से बचाएगा। और दाख की बारी में टीले के रूप में ईश्वर अपने पवित्र मंदिर की भूमि के बीच में रखा। मसीह उनका प्रशिक्षक था। चूंकि वो जंगल में उनके साथ था, इसलिए वो उनका शिक्षक और मार्गदर्शक होना बाकी था। झांकी और मंदिर में उनकी महिमा, दया का शेकिना सिर के ऊपर दया के सिंहासन पर स्थित की गई। ये अपनी ओर से लगातार अपने प्यार और धैर्य के धन को प्रकट करता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को इज़राइल की प्रशंसा और गौरव बनाने की इच्छा की। प्रत्येक आध्यात्मिक लाभ उन्हें दिया गया। ईश्वर ने उनसे चरित्र के निर्माण के लिए अनुकूल कुछ भी नहीं लिया जो उन्हें स्वयं का प्रतिनिधि बना दे। परमेश्वर के कानून के लिए उनकी आज्ञाकारिता उन्हें दुनिया के देशों के सामने समृद्धि का चमत्कार बना देगी। वो जो उन्हें सभी चालाक कामों में ज्ञान और कौशल दे सकता था, वो शिक्षक बना रहेगा और अपने नियमों का पालन करने के लिए उन्हें उत्साहित और उन्नत करेगा। यदि आज्ञाकारी है तो वे अन्य राष्ट्रों को पीड़ित करने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे और बुद्धि के साथ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर की महिमा, उनकी महिमा और शक्ति उनकी सभी समृद्धि में प्रकट होनी थी। याजकों और राजकुमारों का एक राज्य होना था। परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर सबसे महान राष्ट्र बनने के लिए हर सुविधा से सुसज्जित किया।
मूसा के सबसे निश्चित तरीके से मसीह ने उन्हें परमेश्वर के उद्देश्य के सामने खड़ा किया था और उनकी समृद्धि की शर्तों को स्पष्ट किया था। तू अपने ईश्वर के लिए पवित्र व्यक्ति है। वह खुद उन सभी लोगों से ऊपर है जो पृथ्वी के चेहरे पर है, इसलिए जानते हैं कि ईश्वर वफादार है। जो वाचा रखता है उनके साथ दया करो जो उनसे प्यार करते हैं और 1,000 पीढ़ियों तक उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। इसलिए आज्ञाओं, विधियों और निर्णयों की जो मैं तुम्हें आदेश देता हूं उन्हें निभाने के लिए रखो। यदि इनसे निर्णयों को सुनेगा और उन्हें मानेगा तो प्रभु तेरा परमेश्वर जो वाचा और दया जो वह तुम्हारे प्रीति करता है वह तुझसे प्यार करेगा और तुझे आशीर्वाद देगा और बढ़ाएगा। वह तेरी कोख और तेरा देश, तेरे मकई और तेरा दाख मधु का फल और तेरा तेल, तेरी परिजनों की वृद्धि का आशीर्वाद देगा। तेरी भेड़ों की झुंड जिसे देश में वह तेरे बाप को देने का वादा करते हैं, तू सब लोगों के ऊपर धन्य हो जाएगा और प्रभु तुझसे सब बीमारी दूर कर देगा और मिस्र के किसी भी बुरे रोग को नहीं रखेगा जिसे तू जानता है। व्यवस्था विवरण 7 आयत 6, 9, 11 से 15। यदि वे उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर ने उन्हें गेहूं का बेहतरीन लाभ देने और उन्हें शहद को चट्टान से बाहर निकालने का वादा किया। लंबे जीवन के साथ वह उन्हें संतुष्ट करेगा और अपना उद्धार दिखाएगा। ईश्वर के प्रति अवज्ञा के माध्यम से आदम और हवा ने अदन को खो दिया था और पाप के कारण पूरी पृथ्वी शापित की। लेकिन अगर परमेश्वर के लोगों ने उनकी हिदायत को ठुकरा दिया तो उनकी जमीन उर्वरता और सुंदरता के लिए बहाल हो जाएगी। स्वर्ग ईश्वर ने उन्हें मिट्टी की संस्कृति के संबंध में दिशा निर्देश दिए थे और उसकी बहाली में सहयोग करना था। इस प्रकार संपूर्ण भूमि परमेश्वर के नियंत्रण में आध्यात्मिक सत्य का एक वस्तुपाठ बन जाएगा। जैसे कि उनके प्राकृतिक नियमों के पालन में पृथ्वी को अपने खजाने का उत्पादन करना चाहिए, इसलिए उनके नैतिक कानून के अनुसार लोगों के दिलों में उनके चरित्र की विशेषताओं को प्रतिबंधित करना था। यहां तक बुत परस्ती में रहने वाले लोग उन लोगों की श्रेष्ठता को पहचानते हैं जो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। देखो, मूसा ने कहा, मैंने तुम्हें कानून और निर्णय सिखाए हैं, विधियों की मैंने तुमको शिक्षा दी है। मैंने यहोवा के इन नियमों की शिक्षा इसलिए दी कि जिस देश में प्रवेश करने और जिसे अपना बनाने के लिए तैयार हो उसमें उनका पालन कर सके। इन नियमों का सावधानी से पालन करो। ये अन्य राष्ट्रों को सूचित करेगा कि तुम बुद्धि और समझ रखते हो। जब उन देशों के लोगों इन नियमों के विषय में सुनेंगे तो वे कहेंगे कि सचमुच इस महान राष्ट्र इज़राइल के लोग बुद्धिमान और समझदार है। किसी राष्ट्र के कोई देवता उनके साथ नहीं रहता है, जिस तरह हमारा परमेश्वर यहोवा जो हम लोगों के पास रहता है जब हम उसे पुकारते हैं। और कोई दूसरा राष्ट्र इतना महान नहीं कि उसके पास वे अच्छे विधि और नियम हों जिनका उपदेश मैं आज कर रहा हूं। इज़राइल के बच्चों को उन सभी क्षेत्रों पर कब्जा करना था जो परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया था। जिन राष्ट्रों ने सच्चे परमेश्वर की उपासना और सेवा को अस्वीकार कर दिया था उन्हें दूर किया जाना था। लेकिन यह ईश्वर का उद्देश्य कि इज़राइल के माध्यम से उनके चरित्र के रहस्योद्घाटन द्वारा पुरुषों को उसके प्रति आकर्षित किया जाए। सारी दुनिया को सुसमाचार का निमंत्रण दिया जाना चाहिए। बलिदान सेवा के शिक्षण के माध्यम से मसीह को राष्ट्रों के सामने उत्थान करना था और जो भी उसे देखना चाहता है उसे जीना चाहिए। सभी जैसे राहाब जो कनानी, रूत, मोआबी बुत परस्ती से सच्ची आराधना में बदल गए अपने चुने हुए लोगों को एकजुट करने के लिए। जब तक इज़राइल की संख्या बढ़ी उन्हें अपनी सीमाओं को बढ़ाना था, जब तक कि उनके राज्य को दुनिया ने गले नहीं लगा लिए। ईश्वर ने सभी लोगों को अपने दयालु शासन के तहत लाने की इच्छा की। उसकी इच्छा थी कि पृथ्वी को आनंद और शांति से भर दिया जाए। उसने मनुष्य को आनंद के लिए बनाया और उसने स्वर्ग की शांति के साथ मानव के दिलों को भरने की लालसा की। उनकी इच्छा है कि परिवार के लोग ऊपर दिए गए महान परिवार के प्रतीक हो गए। लेकिन इज़राइल ने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं किया। प्रभु ने घोषणा की, मैंने तुम्हें विशेष अंगूर की बेल की तरह रोपा, तुम सभी अच्छे बीज के समान थे। तुम भिन्न भिन्न बल में कैसे बदले जो बुरे फल देती है। यरमया 2 आयत 21। इज़राइल एक ऐसी दाखलता जिस पर बहुतेरे फल लगते हैं। होशे 10 आयत 1। हे यरूशलेम के लोगों और यहूदा के वासियों, मेर और मेरे अंगूर के बाग के बारे में निर्णय करो।
मैं और क्या अपने बाग के लिए कर सकता था। मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। मैंने उत्तम अंगूरों के लगने की आशा की, किंतु वहां बुरे अंगूर ही लगे, ऐसा हुआ। अब मैं तुमको बताऊंगा कि मैं अपने अंगूर के बगीचे में क्या कुछ करूंगा। वो कटीली झाड़ी जो खेत की रक्षा करती है उसे उखाड़ दूंगा और उन झाड़ियों की आग में जला दूंगा। पत्थर का परकोटा तोड़कर गिरा दूंगा। बगीचे को रौंद दिया जाएगा। अंगूर के बगीचे को मैं खाली खेत में उगा करेंगे। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे वहां न बरसें। सर्वशक्तिशाली यहोवा का अंगूर का बगीचा इज़राइल का राष्ट्र है, और अंगूर की बेले जिन्हें यहोवा प्रेम करता है यहूदा के लोग है। यहोवा ने न्याय की आशा की थी, किंतु वह हत्या बस रही। यहोवा ने निष्पक्ष की आशा की थी, किंतु वहां बस सहायता मांगने वालों का रोना रहा जिनके साथ बुरा किया गया था। यशाया 5:3-7। यहोवा ने मूसा के माध्यम से अपने लोगों के सामने अविश्वास का परिणाम निर्धारित किया था। अपनी वाचा को रखने से इनकार करने पर वे खुद को परमेश्वर के जीवन से अलग कर देंगे और उनका आशीर्वाद उन पर नहीं आ सकता था। खबरदार, मूसा ने कहा, सावधान रहो, यहोवा अपने परमेश्वर को न भूलो। सावधान रहो, आज मैं जिन आदेशों, विधियों और नियमों को दे रहा हूं उसका पालन करो। तुम्हारे खाने के लिए बहुत अधिक होगा और तुम अच्छे मकान बनाओगे और उनमें रहोगे। तुम्हारे गाय, मवेशी और भेड़ों के झुंड बहुत बड़े होंगे। तुम अधिक से अधिक सोना और चांदी पाओगे और तुम्हारे पास बहुत सी चीजें होगी। जब ऐसा होगा तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम्हें घमंड ना हो। तुम्हें यहोवा अपने परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए। वो तुमको मिस्र से लाया जहां तुम दास थे। अपने मन में कभी ऐसा ना सोचा, मैंने यह सारी संपत्ति अपनी शक्ति और योग्यता से पाई है। यहोवा अपने परमेश्वर को कभी न भूलो। तुम किसी दूसरे देवता की पूजा या सेवा के लिए उसका अनुसरण न करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो निश्चय ही नष्ट हो जाओगे। यहोवा तुम्हारे लिए अन्य को नष्ट कर रहा हूं। तुम भी उन्हीं राष्ट्रों की तरह नष्ट हो जाओगे जिन्हें यहोवा तुम्हारे सामने नष्ट कर रहा है। ये होगा क्योंकि तुमने यहोवा की आज्ञा का पालन नहीं किया है। व्यवस्था विवरण 8:11-14, 17, 19, 20। यहूदी लोगों द्वारा चेतावनी के रूप में चेतावनी नहीं दी गई। वे ईश्वर को भूल गए और अपने प्रतिनिधियों के रूप में उच्च विशेषाधिकार की दृष्टि खो गई। उन्हें जो आशीर्वाद मिला था वो दुनिया के लिए कोई आशीर्वाद नहीं था। उनके स्वयं के महिमा मंडल के लिए उनके सभी लाभों को विनियोजित किया गया था। उन्होंने ईश्वर को उस सेवा से लूटा जो उन्हें उनकी आवश्यकता थी, और उन्होंने धार्मिक मार्गदर्शन के साथी पुरुषों और पवित्र उदाहरण के अपने साथियों को लूट लिया। रूढ़िवासी दुनिया के निवासियों की तरह उन्होंने अपने बुरे दिलों की हर कल्पना का पालन किया। इस प्रकार उन्होंने पवित्र चीजों को एक दिखावा करते हुए कहा, ईश्वर का मंदिर ये है। यर्मया 7:4। जबकि उसी समय वे ईश्वर के चरित्र को गलत तरीके से पेश कर रहे थे, उनका नाम बदनाम कर रहे थे और उनका प्रदूषण कर रहे थे। जिन काश्तकारों को ईश्वर की दाख की बारी के प्रभारी के रूप में रखा गया था वे अपने भरोसे पर खरे नहीं उतरे। याजक और शिक्षक लोगों के वफादार प्रशिक्षक नहीं थे। वे ईश्वर की भलाई और दया और उनके प्यार और सेवा के लिए उनके दावे के सामने नहीं रखते थे। इन काश्तकारों ने अपनी शान की मांग की। उन्होंने दाख की बारी के फल को उपयुक्त बनाने की इच्छा की। ये उनका ध्यान आकर्षित करने और खुद को श्रद्धांजलि देने के लिए अध्ययन के रूप में इज़राइल में इन नेताओं का अपराध बोध साधारण पापी के अपराध बोध की तरह नहीं था। ये लोग परमेश्वर के लिए सबसे अधिक दायित्व के तहत खड़े थे। उन्होंने खुद को इस प्रकार ईश्वर की शिक्षा देने और अपने व्यवहारिक जीवन में आज्ञाकारिता लाने का संकल्प लिया था। ऐसा करने के बजाय वे धर्म ग्रंथों को तोड़ रहे थे। उन्होंने पुरुषों पर भारी बोझ डाला, जीवन में हर कदम पर पहुंचने वाले समारोहों को लागू किया। लोग लगातार अशांति में रहते थे क्योंकि वे रब्बियों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते थे।
जैसा कि उन्होंने मानव निर्मित आज्ञाओं को रखने की असंभवता को देख, वे परमेश्वर की आज्ञाओं के संबंध में लापरवाह हो गए। प्रभु ने अपने लोगों को निर्देश दिया कि वो दाख की बारी के मालिक थे, और यह कि उनकी सारी संपत्ति उन्हें उनके लिए इस्तेमाल होने के विश्वास में दी गई थी। लेकिन याजक और शिक्षक अपने पवित्र कार्यालय का काम नहीं करते थे, वे ईश्वर की संपत्ति को संभाल रहे थे। वे उनके काम की उन्नति के लिए उन्हें उनके द्वारा सौंपे गए साधनों और सुविधाओं की व्यवस्थित रूप से लूट कर रहे थे। उनके लोभ और लालच के कारण उन्हें तन्हाई से भी घृणा करनी पड़ी। इस प्रकार ईश्वर के चरित्र और उसके राज्य के कानूनों की गलत व्याख्या करने के लिए अन्य जातियों को अवसर दिया गया। एक पिता के दिल के साथ ईश्वर ने लोगों को सहन किया। वो उनके द्वारा दिए गए दया और दया उनसे ले ली गई। धैर्यपूर्वक उसने उनके सामने अपने पापों को निर्धारित किया और उनकी स्वीकारोक्ति के लिए मना किया। भविष्यवक्ता और दूतों को काष्ठकार पर ईश्वर के दावे का आग्रह करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनका स्वागत करने के बजाय उन्हें दुश्मन माना गया। काष्ठकारों ने उन्हें सताया और मार डाला। ईश्वर ने अभी भी अन्य दूतों को भेजा, लेकिन उन्हें पहले जैसा ही उपचार मिला, केवल यही कि काष्ठकार अब भी अधिक दृढ़ घृणा दिखाते हैं। अंतिम साधन के रूप में ईश्वर ने अपने पुत्र को यह कहते हुए भेजा कि वे मेरे पुत्र की श्रद्धा करेंगे, लेकिन उनके प्रतिरोध ने उन्हें दृढ़ बना दिया था और आपस में कहा, ये वारिस है, आओ हम उसे मार दें और हमें उसकी विरासत पर कब्जा कर ले, फिर हमें दाख की बारी का आनंद लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा और जैसा कि हम फल के साथ कृपा करते हैं। यहूदी शासक ईश्वर से प्यार नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने खुद को उससे दूर कर लिया और एक बसावट के लिए उसके जितने भी काम थे उन्हें खारिज कर दिया। मसीह परमेश्वर का प्रिय दाख की बारी के मालिक के दावों का दावा करने आया था, लेकिन काष्ठकार ने उसे चिन्हित अवमानना के साथ व्यवहार किया, यह कहते हुए कि हमारे पास शासन करने के लिए ये आदमी नहीं होगा। उन्होंने यीशु के चरित्र की सुंदरता को उकेरा। उनके पढ़ाने का तरीका उनसे बहुत बेहतर था। उन्होंने उनकी सफलता के लिए दुस्साहस किया। वो उनके साथ अनुनासिक उपचार कपटी का अनावरण करता है और उन्हें उनकी कार्यवाही के निश्चित परिणाम दिखाता है। इससे उनमें पागलपन पैदा हो गया। वे फटकार के तहत होशियार थे कि वे चुप नहीं रह सकते थे। वे धार्मिकता के उच्च स्तर से नफरत करते थे जो मसीह ने लगातार प्रस्तुत किया था। उन्होंने देखा कि उनकी शिक्षा उन्हें दे रही थी, जहां उसके स्वार्थवश अनियंत्रित थे, और उन्होंने उसे मारने की ठान ली थी। वे सच्चाई और पवित्रता अपने उदाहरण से नफरत करते थे। उन्होंने जो कुछ भी सभी में आध्यात्मिक का पता चला। उनका पूरा जीवन स्वार्थ के लिए एक निंदा था, और जब अंतिम परीक्षण आया तो परीक्षण का अर्थ था जो शाश्वत जीवन के प्रति आज्ञाकारिता, ये अनंत मृत्यु के प्रति अवज्ञा। उन्होंने इज़राइल के पवित्र एक को अस्वीकार कर दिया। फिर उन्हें मसीह और बरब्बास के बीच चुनाव करने के लिए कहा गया। उन्होंने चिल्लाते हुए, हाँ बरब्बास को छोड़ दो, लूका 23:18। और जब पिलातुस ने पूछा, तब मैं यीशु के साथ क्या करूं, उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, मत्ती 27:22। क्या मैं तुम्हारे राजा को सूली पर चढ़ा दूंगा, पिलातुस ने पूछा, और याजकों और शासकों से जवाब आया, हमारे पास कोई राजा नहीं है लेकिन सीजर है, यूहन्ना 19:15। जब पिलातुस ने अपने हाथ धोए तो कहा, मैं इस न्यायपूर्ण व्यक्ति के खून का निर्दोषी हूं। याजक अज्ञानी भीड़ के साथ भावुक रूप से घोषणा करते हुए कहते हैं, उनका खून हम पर, हमारे बच्चों पर हो, मत्ती 27:24-25।
इस प्रकार यहूदी नेताओं ने अपनी पंसद बनाई। उनका निर्णय उस पुस्तक में दर्ज किया गया जिसे यूहन्ना ने हाथ में देखा, जो कि सिंहासन पर बैठा था, वो पुस्तक जिसे कोई भी व्यक्ति नहीं खोल सकता था। अपनी पूरी निष्ठा के साथ ये निर्णय उनके सामने उस दिन आएगा जब ये पुस्तक यहूदा के गोत्र के शेर द्वारा खोली जाती है। यहूदी लोगों ने इस विचार को घोषित किया कि वे स्वर्ग के पसंदीदा थे, और ये कि उन्हें हमेशा ईश्वर की कलीसिया के रूप में
उत्कृष्ट माना जाता था। वे अब्राहम के बच्चे थे, उन्होंने अपने अधिकारों के प्रसार के लिए पृथ्वी और स्वर्ग को तुच्छ समझा, लेकिन विश्वासघाती जीवन से वे ईश्वर से अलग होने के लिए स्वर्ग की निंदा की तैयारी कर रहे थे। दाख की बारी में जब मसीह ने याजकों के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करने से पहले उनका चित्रण किया था, तो उन्होंने प्रश्न किया, जब दाख की बारी के स्वामी के रूप में ईश्वर है तो वे उन काश्तकारों का क्या होगा? याजक गहरी रुचि के साथ क्या अनुसरण कर रहे थे और खुद के विषय का संबंध पर विचार किए बिना वे लोगों के साथ जवाब देने में शामिल हो गए। वो उन दुष्ट पुरुषों को बुरी तरह से नष्ट कर देगा और अपने दाख की बारी की अन्य काश्तकार पर छोड़ देगा, जो उन्हें उनके मौसम में फल प्रदान करेंगे। अनजाने में उन्होंने अपना अंत सुनाया। यीशु ने उन पर ध्यान दिया और उनकी खोज की निगाह में उन्हें पता था कि उन्होंने उनके दिल के रहस्यों को पढ़ा था। उनकी दिव्यता उनके सामने अदृश्य शक्ति के साथ चमक उठी। उन्होंने काश्तकार की एक तस्वीर में खुद को देखा और अनजाने में कहा, ईश्वर ने करें। पूरी तरह से और अफसोस के साथ मसीह ने पूछा, क्या तुमने कभी शास्त्रों में नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को बिल्डरों ने अस्वीकार कर दिया वही कोने का प्रमुख बन गया? ये प्रभु का काम है और ये हमारी नजर में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का राज्य आपसे लिया जाएगा और वो फल देने वाले राष्ट्र को दिया जाएगा, और जो भी इस पत्थर पर गिरेगा वो टूट जाएगा, लेकिन जिस पर भी ये गिरेगा वो उसे सत्ता में पीस देगा। यदि लोग उन्हें प्राप्त कर लेते तो मसीह यहूदी राष्ट्र का कयामत टाल देता, लेकिन ईर्ष्या ने उन्हें नपुंसक बना दिया। उन्होंने निर्धारित किया कि वे नासरत के यीशु को मसीह के रूप में प्राप्त नहीं करेंगे। दुनिया की रोशनी को खारिज कर दिया और आधी रात के अंधेरे के रूप में अंधेरे से घिरे उनके जीवन को शांत कर दिया। विनाश यहूदी राष्ट्र पर आया था, उनके अपने भयंकर जुनून, अनियंत्रित और उनके खंडहर को गढ़ा। अपने अंधे क्रोध में उन्होंने एक दूसरे को नष्ट कर दिया। उनका विद्रोही अडिग अभिमान उन्हें अपने रोमन विजेता के क्रोध पर ले आया। यरूशलेम को नष्ट कर दिया, मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया और उसकी जगह एक खेत की तरह गिरवी रख दी गई। यहूदी के बच्चे मृत्यु के सबसे भयानक रूपों से पीड़ित थे, लाखों बेच दिए गए तपती भूमि में बंधुआ के रूप में सेवा करने के लिए। एक लोगों के रूप में यहूदी ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहे थे और उनसे दाख की बारी ली गई थी। विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जो काम किया था उसे दूसरों को सौंपा गया था। आज की कलीसिया, दाख की बारी का दृष्टांत यहूदी राष्ट्र के लिए अकेला है। ये हमारे लिए एक सबक है। इस पीढ़ी में कलीसिया को ईश्वर द्वारा बहुत विशेषाधिकार और आशीर्वाद के साथ संपन्न किया गया है और वो इसी रिटर्न की उम्मीद करता है। हमें एक महंगी फिरौती दी गई है। इस फिरौती की महानता से ही हम इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं। इस धरती पर, जिस पर कि ईश्वर के बेटे के आंसू और खून से है, उसे फिरदौस के अनमोल फल दिए जाएंगे। परमेश्वर के लोगों के जीवन में उनके वचन के सत्य उनकी महिमा और उत्कृष्टता को प्रकट करते हैं। अपने लोगों के माध्यम से मसीह अपने चरित्र और अपने राज्य के सिद्धांतों को प्रकट करना है। शैतान ईश्वर के काम का मुकाबला करना चाहता है और वो लगातार पुरुषों से अपने सिद्धांतों को स्वीकार करने का आग्रह कर रहा है। वो एक प्रबुद्ध लोगों के रूप में ईश्वर के चुने हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वो भाइयों का अभियुक्त है। उसकी आरोपित शक्ति उन लोगों के खिलाफ काम करती है जो धार्मिकता का काम करते हैं। प्रभु अपने लोगों के माध्यम से सही सिद्धांतों के लिए आज्ञाकारिता के परिणामों को दिखाकर शैतान के आरोपों का जवाब देने की इच्छा रखते हैं। इन सिद्धांतों को व्यक्तिगत मसीही, परिवार में, चर्च में, ईश्वर की सेवा के लिए स्थापित प्रत्येक संस्थान में प्रकट किया जाना है। सभी इस बात के प्रतीक है कि दुनिया के लिए क्या किया जा सकता है। वे सुसमाचार की सच्चाइयों की बचत शक्ति के प्रकार से है। सभी मानव जाति के लिए ईश्वर के महान उद्देश्य की पूर्ति में एजेंसियां हैं। यहूदी नेताओं ने उनके शानदार मंदिर और उनकी धार्मिक सेवा के संस्कारों पर गर्व के साथ देखा, लेकिन न्याय, दया और ईश्वर के प्यार में कमी थी। मंदिर की महिमा, उनकी सेवा का वैभव, उन्हें ईश्वर के लिए सिफारिश नहीं कर सकता था। उनके लिए जो उनकी दृष्टि में अकेले मूल्य का है उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने उसे एक विनम्र और विपरीत आत्मा के बलिदान को नहीं लिया। यहां तक होता है जब परमेश्वर के राज्य के महत्वपूर्ण सिद्धांत खो जाते हैं कि समारोह बहुपक्षीय और असाधारण हो जाते हैं। ये तब होता है, तब चरित्र निर्माण की उपेक्षा की जाती है, जब आत्मा में अंगार की कमी होती है, जब ईश्वरत्व की सादगी खो जाती है, उस गर्व और प्रदर्शन का प्यार शानदार कलीसिया की मूर्तियों की मांग करता है, शोभा देता है और समारोह आयोजित करता है। इस सब में ईश्वर को सम्मानित नहीं किया जाता है। एक फैशनेबल धर्मगीत जिसमें समारोहों, दंगे और प्रदर्शन शामिल है, उसे स्वीकार्य नहीं है। इसकी सेवाओं को स्वर्गीय दूतों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। ईश्वर की दृष्टि में कलीसिया बहुत मूल्यवान है। वो इसे बाहरी फायदे के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी से धर्मनिष्ठता के लिए महत्व देते हैं। वो आध्यात्मिक ज्ञान में उनकी प्रगति के अनुसार, मसीह के ज्ञान में सदस्यों की वृद्धि के अनुसार इसका अनुमान लगाते हैं। मसीह को अपनी दाख की बारी से पवित्रता और निस्वार्थता का फल प्राप्त करने की भूख है। वो प्यार और अच्छाइयों के सिद्धांतों की तलाश करता है। जो लोग मसीह के प्रतिनिधि हैं, उन सभी में कला की सुंदरता की तुलना स्वभाव और चरित्र की सुंदरता के साथ नहीं की जा सकती है। ये अनुग्रह का वातावरण है जो विश्वासियों की आत्मा, मन और हृदय पर काम करने वाली पवित्र आत्मा को घेरता है, जो उसे जीवन के प्रति जीवन का एक स्वाद बनाता है और ईश्वर को अपने काम को आशीर्वाद देने में सक्षम बनाता है। एक मंडली भूमि में सबसे गरीब हो सकती है। ये किसी भी जावक शो के आकर्षण के बिना हो सकता है, लेकिन अगर सदस्य मसीह के चरित्र के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो उनकी आत्मा में उनकी खुशी होगी। स्वर्गदूत उनकी चिता में उनके साथ एकजुट होंगे। कृतज्ञ हृदय से आभार प्रकट करने वाला ईश्वर एक मधुर विस्मृति के रूप में ईश्वर के पास जाएगा। प्रभु की इच्छा है कि हम उनकी अच्छाई का उल्लेख करें और उनकी शक्ति के बारे में बताएं। उन्हें प्रशंसा और धन्यवाद की अभिव्यक्ति से सम्मानित किया जाता है। वे कहते हैं, किसने इतनी प्रशंसा की जिसने मुझे गौरवान्वित किया? भजन संहिता 50 आयत 23। इज़राइल के लोग जंगल में यात्रा करते हुए पवित्र गीत में परमेश्वर की स्तुति करते थे। प्रभु की आज्ञाओं और वादों का संगति के लिए निर्धारित किया गया था और सभी यात्रा के दौरान ये तीर्थ यात्रा द्वारा गए थे और कनान में, जैसा कि वे अपने पवित्र पर्वों पर मिले, तो परमेश्वर के अद्भुत कामों को याद किया जाना था और उनके नाम के प्रति आभार व्यक्त किया जाना था। ईश्वर ने चाहा कि उनके लोगों का पूरा जीवन प्रशंसा का जीवन है। इस प्रकार उनका रास्ता सभी देशों के बीच स्वास्थ्य पर ज्ञात स्वस्थ बनाया जाना था। भजन संहिता 67 आयत 2। तो ये अब होना चाहिए। दुनिया के लोग झूठे देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनकी झूठी उपासना से, उनकी मूर्तियों का खंडन सुनने से नहीं बल्कि कुछ बेहतर करने से, ईश्वर की अच्छाई से अवगत होना है। ये मेरे गवाह है, यहोवा की यही वाणी है, मैं ईश्वर हूं। यशाया 43 आयत 12।
प्रभु हमें मुक्ति की महान योजना की सराहना करने, ईश्वर की संतान के रूप में हमारे उच्चाधिकारी का एहसास करने और कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद के साथ आज्ञाकारिता में उसके समक्ष चलने की इच्छा करता है। वो हमें हर दिन खुशी के साथ जीवन के नएपन में सेवा करने की इच्छा रखता है। वो हमारे दिलों में भलाई के लिए कृतज्ञता देखने के लिए तरसते हैं, क्योंकि हमारे नाम मेमने जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, क्योंकि हम अपना सारा ध्यान उसी पर लगा सकते हैं जो हमारी परवाह करता है। वो हमें आनंदित करता है क्योंकि हम प्रभु की धरोहर है, क्योंकि मसीह की धार्मिकता उसके धर्मियों को सफेद लिबास है, क्योंकि हमें अपने उद्धारकर्ता के जल्द आने की धन्य आशा है। ईश्वर की पूर्णता और ईमानदारी से हृदय से प्रशंसा करना उतना ही कर्तव्य है जितना की प्रार्थना।
हम दुनिया को और सभी स्वर्गीय बुद्धिमताओं को दिखाने के लिए है कि हम गिरी हुई मानवता के लिए ईश्वर के अद्भुत प्रेम की सराहना करते हैं और हम उसकी असीम परिपूर्णता से बड़े और अभी तक बड़े आशीर्वाद की उम्मीद कर रहे हैं। जितना हम करते हैं उससे कहीं अधिक हमें अपने अनुभव में अनमोल अध्यायों की बात करनी चाहिए। पवित्र आत्मा की एक विशेष चौकी के बाद में प्रभु में हमारी खुशी और उनकी सेवा में हमारी दक्षता, उनके बच्चों की ओर से उनकी अच्छाई और उनके अद्भुत कार्यों को पढ़कर बहुत बढ़ जाएगी। ये अभ्यास शैतान की शक्ति लाते हैं। वे बड़बड़ाहट और शिकायत की भावना को बाहर निकालते हैं और प्रशिक्षित व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाते हैं। वे चीजें की उन विशेषताओं पर खेती करते हैं जो स्वर्गीय हवेली के लिए पृथ्वी पर रहने वालों को फिर कर देंगे। इस प्रकार की गवाही का दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। मसीह को जीने वाली आत्माओं के लिए और कोई अधिक साधन नियोजित नहीं किया जा सकता है। हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मूर्त सेवा द्वारा उसके नाम की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति में सभी कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें अपने उपहार दिए हैं जो हम भी दे सकते हैं और इस प्रकार दुनिया को उनका चरित्र ज्ञात करा सकते हैं। यहूदी अर्थव्यवस्था के तहत उपहार और दान ने ईश्वर की पूजा का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया। इसराइलियों को यह सिखाया गया कि वे अपनी सारी आय का एक हिस्सा गर्भगृह की सेवा में समर्पित करें। इसके अलावा वे पाप पुण्य, मुफत उपहार और कृतज्ञता का दान लेने वाले थे। परमेश्वर हमसे यह अपेक्षा नहीं करता कि वह अपने लोगों से उसकी उपेक्षा से कमतर है। आत्माओं के उद्धार के लिए महान कार्य को आगे बढ़ाने चाहिए। दशमांश में उपहार और दान के साथ उन्होंने इस काम के प्रावधान किया है। इस प्रकार उनका इरादा है कि सुसमाचार की सेवकाई कायम रहेगी। वो दशमांश को अपने होने का दावा करता है और इसे कभी भी एक पवित्र रिजर्व के रूप में माना जाना चाहिए। अपने कारण के लाभ के लिए अपने खजाने में रखा जाना चाहिए। वो हमारी मुफत इच्छा उपहार और कृतज्ञता की पेशकश के लिए भी पूछता है। सभी को धरती के सुसमाचार के प्रति ईश्वर की सेवा में निजी सेवकाई शामिल है। व्यक्तिगत प्रयास से हम दुनिया को बचाने के लिए उसके साथ सहयोग करना चाहते हैं। मसीह का आदेश, पूरी दुनिया में जाओ, प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो, उसके सभी अनुयायियों से बात की जाती है। मरकुस 16:15। मसीह के जीवन के लिए दोषी ठहराए गए सभी लोगों को उनके साथी पुरुषों के उद्धार के काम करने के लिए ठहराया जाता है। उनके दिल मसीह के दिल के साथ एकजुट हो जाएंगे। आत्माओं के लिए वही लालसा जो उन्होंने महसूस की है उनमें प्रकट होगी। सभी एक ही जगह को नहीं भर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए एक जगह और काम है। प्राचीन काल में अब्राहम, इसाहक, याकूब, मूसा अपनी विनम्रता और बुद्धिमता के साथ, यहोशु अपनी विभिन्न क्षमताओं के साथ सभी ईश्वर की सेवा में सूचीबद्ध थे। मिरियम का संगीत, डेबेरा का साहस और पवित्रता रूप का फिल्मी स्नेह, शमूएल की आज्ञाकारिता और विश्वासशीलता, एलिया की बड़ी निष्ठा, एलिशा के नरम प्रभाव को कम करने के लिए सभी की आवश्यकता थी। इसलिए अब जिन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिला है उन्हें वास्तविक सेवा द्वारा जवाब देना है। प्रत्येक उपहार को उसके राज्य की उन्नति और उसके नाम की महिमा के लिए नियोजित किया जाना है।
सभी जो एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में मसीह को प्राप्त करते हैं वे सुसमाचार की सच्चाई और जीवन पर उसकी बचत शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसकी पूर्ति के लिए प्रावधान किए बिना ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है। मसीह की कृपा से हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर की आवश्यकता है। स्वर्ग के सभी धन ईश्वर के लोगों के माध्यम से प्रकट किए जाने हैं। यहां मेरे पिता की महिमा है। मसीह कहते हैं कि तुम बहुत फल लाऊं, इसलिए तुम मेरे शिष्य बनोगे। यूहन्ना 15:8। परमेश्वर पूरी पृथ्वी को अपने दाख की बारी के रूप में दावा करता है। हालांकि अब ये सूदखोर के हाथ में है, ये ईश्वर का है। छुटकारे से कोई सज्जन से कम नहीं है। दुनिया के लिए मसीह की कुर्बानी दी गई। ईश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दिया। यूहन्ना 3:16। ये उस उपहार के माध्यम से है जो पुरुषों के लिए हर दूसरे को प्रदान किया जाता है। पूरे विश्व को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त था। बारिश की हर बूंद हर अचूक दौर पर, प्रकाश की किरण हर पत्ती और फूल और फल ईश्वर की लंबी तपस्या और उसके महान प्रेम की गवाही देते हैं। और महान दाता को क्या वापस दिया जाता है? परमेश्वर के दावे को कैसे मानने वाले लोग हैं? अपने जीवन की सेवा देने के लिए आम जनता किसके पास जाती है? वे धन दौलत में लगे हुए हैं। दुनिया में धन, पद, सुख उनका उद्देश्य है। धन लूट से प्राप्त होता है, केवल मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का। पुरुष अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने उपहारों का उपयोग कर रहे हैं। सब कुछ वे समझ सकते हैं। सेवकाई को अपने लालच और स्वार्थी आनंद के लिए किया जाता है। दुनिया का पाप आज वो पाप है जो इज़राइल पर विनाश लाता है, और ईश्वर के प्रति समर्पण, अवसरों की उपेक्षा और ईश्वर के उपहारों की स्वार्थी विनय को आशीर्वाद देना इज़राइल पर कोद खरीदने वाले पाप में शामिल थे। वो आज दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। जैतून पर मसीह ने जो आंसू बहाए, वो चुने हुए शहर की अनदेखी करते हुए साथ नहीं थे। यरूशलम के भाग्य में उन्होंने दुनिया के विनाश को स्वीकार किया और कहा, क्या ही भला होता। किंतु हो, तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वो तेरी आंखों से छिप गई है। वो दिन करीब आ रहा है। दया और विशेषाधिकार की अवधि अच्छी तरह से समाप्त हो गई है। प्रतिशोध के बादल जमा हो रहे हैं। ईश्वर की कृपा को अस्वीकार करने वाले तेज और अपरिवर्तनीय खंडहर में शामिल होने वाले हैं। फिर भी दुनिया से रही है। लोगों को उनकी यात्रा का समय नहीं पता है। इस संकट में चर्च कहां पाया जाता है? क्या इसके सदस्य परमेश्वर के दावों को पूरा कर रहे हैं? क्या वे अपना कमीशन पूरा कर रहे हैं और दुनिया के लिए अपने चरित्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या वे अपने साथी आदमियों को चेतावनी के अंतिम दयालु संदेश पर ध्यान देने का आग्रह कर रहे हैं? पुरुष संकट में है। लाखों लोग खत्म हो रहे हैं, लेकिन इन आत्माओं के लिए मसीह के कितने ही अनुयायी बोझ है। एक दुनिया की निर्मित आधार में लटक गई, लेकिन ये शायद ही कभी उन लोगों के लिए भी चलती है जो नंबर को दिए सबसे दूर हो गई। सत्य पर विश्वास करने का दावा करते हैं। उसे प्रेम की कमी है, जिसके कारण मसीह ने अपने स्वर्गीय घर को छोड़ दिया और मनुष्य के स्वभाव को ले लिया, कि मानवता मानवता को छू सके और उसे देवत्व की ओर आकर्षित कर सके। ईश्वर के लोगों पर एक स्तूप, एक पक्षाघात है जो उन्हें घंटे के कर्तव्य को समझने से रोकता है। जब इसराइलियों ने कनान में प्रवेश किया, उन्होंने पूरी भूमि पर कब्जा करके परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं किया। आंशिक विजय प्राप्त करने के बाद वे अपनी जीत के फल का आनंद लेने के लिए चल बसे। अपने विश्वास और सहजता के प्यार में वो नए इलाकों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने के बजाय पहले से ही जीते गए हिस्सों में अलग हो गए। इस प्रकार वे ईश्वर से विदा होने लगे। अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफलता के द्वारा उन्होंने उनके लिए अपने आशीर्वाद के वादे को पूरा करना असंभव बना दिया। क्या आज का चर्च ऐसे ही काम नहीं कर रहा है? उनके सामने पूरी दुनिया के साथ सुसमाचार की जरूरत है, जो कि वे खुद को आत्मघात कर सकते हैं। वे मसीही विशेषण का आनंद ले सकते हैं, नए क्षेत्रों से परे ले जाते हैं। उन्होंने मसीह के निर्देश को पूरा करने से इनकार कर दिया। तुम सब दुनिया में जाओ और प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। मरकुस 16:15। क्या वे यहूदी चर्च से कम दोषी थे? स्वर्ग के ब्रह्मांड से पहले मसीह के सिद्ध अनुयायी परीक्षण पर है, लेकिन उनके उत्साह की ठंडक और ईश्वर की सेवा में उनके प्रयासों की कर्तव्यहीनता उन्हें बेवफा करार देती है। यदि वो जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा कर सकते थे, तो निंदा उन पर आराम नहीं करेगी। लेकिन उनके दिल काम में मग्न थे। वे और भी बहुत कुछ कर सकते थे। वे जानते हैं और दुनिया जानती है कि उनके पास बहुत हद तक आत्म अस्वीकार की भावना होती है। कई ऐसे हैं जिनके नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं, न कि निर्माता लेकिन उपभोक्ता। कई लोग जो मसीह के नाम को धारण करते हैं, उनकी महिमा अस्पष्ट है। उनकी सुंदरता पर पर्दा पड़ा है, उनके सम्मान को रोक दिया गया। कई ऐसे हैं जिनके नाम कलीसिया की पुस्तकों में हैं, लेकिन जो मसीह के शासन में नहीं है। वे उसके निर्देश पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तथा अपना काम कर रहे हैं, इसलिए वे दुश्मन के नियंत्रण में हैं। वो कोई सकारात्मक अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे आसपास नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रभाव जीवन के लिए जीवन का एक स्वाद नहीं है, यह मृत्यु के लिए मौत का स्वाद है। प्रभु कहते हैं, क्या मैं इन चीजों के लिए नहीं जाऊंगा? यिर्मयाह 5:9। क्योंकि वे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहे थे, इसराइल के बच्चों को अलग रखा गया था और परमेश्वर का एहसान अन्य लोगों के लिए बढ़ाया गया था। अगर वे भी बेवफा साबित होते हैं तो क्या इस तरह से खारिज नहीं किए जाएंगे? अंगूर के काम के दृष्टांत। ये काश्तकार था जिसे मसीह ने दोषी ठहराया था। ये वे थे जिन्होंने अपने स्वामी को अपने जमीन के फल को वापस करने से इनकार कर दिया था। यहूदी राष्ट्र में इतने याजकों और शिक्षकों को रखा जिन्होंने लोगों को गुमराह करके उस परमेश्वर की सेवा को लूट लिया था जिसका उन्होंने दावा किया था। ये वे थे जिन्होंने राष्ट्र को मसीह से अलग कर दिया। मानवीय परंपरा से बेपर्दा ईश्वर का कानून मसीह द्वारा आज्ञाकारिता के महान मानक के रूप में प्रस्तुत किया था। इससे रब्बियों में दुश्मनी और बढ़ गई। उन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर मानव शिक्षण स्थापित किया था और लोगों को उनके उपदेशों से दूर किया था। वे परमेश्वर के वचन की आवश्यकताओं को पालन करने के लिए अपने मानव निर्मित आदेशों को नहीं छोड़ेंगे। वे इस कारण से गर्व और पुरुषों की प्रशंसा का त्याग नहीं करेंगे। जब यीशु आए तो राष्ट्र को ईश्वर के दासों के सामने पेश करते हुए याजकों और बुजुर्गों ने उनके और लोगों के बीच हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार से इनकार कर दिया। वे उसकी फटकार और चेतावनियों को नहीं स्वीकारेंगे और उन्होंने लोगों को उसके खिलाफ होने और उसके विनाश के लिए तैयार किया। हमारे दिन में काम पर एक ही प्रभाव नहीं है। प्रभु के दाख की बारी के काश्तकार यहूदी नेताओं के कदमों को पालन नहीं कर रहे हैं। क्या धार्मिक शिक्षक पुरुषों को परमेश्वर के वचन की सादी आवश्यकताओं से दूर नहीं कर रहे हैं? क्या वे परमेश्वर के नियम का पालन करने के लिए उन्हें शिक्षित करने के बजाय उन्हें अपराध में शिक्षित नहीं कर रहे हैं? चर्च के कई हिस्सों से लोगों को सिखाया जाता है कि ईश्वर का कानून उन पर बाध्यकारी नहीं है। मानव परंपराएं, अध्यादेश और रीति रिवाज अतिरंजित हैं। ईश्वर के दावों के कारण अभिमान और आत्मसंतुष्टि को बढ़ावा मिलता है, जबकि ईश्वर के दावों का अनदेखा किया जाता है।
ईश्वर के कानून को अलग करने में पुरुषों को नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर का नियम उनके चरित्र की प्रतिलेख है। ये उनके राज्य के सिद्धांतों का प्रतीक है। वो जो इस सिद्धांतों को स्वीकार करने से इनकार करता है, वो खुद को चैनल के बाहर रख रहा है जहां ईश्वर का आशीर्वाद है। इसराइल के सामने जो शानदार संभावनाएं हैं, उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के जरिए ही महसूस किया जा सकता है। चरित्र का वही उत्थान, आशीर्वाद की वही परिपूर्णता, मन और आत्मा और शरीर का आशीर्वाद, घर और मैदान पर आशीर्वाद, इस जीवन का आशीर्वाद और आने वाले जीवन के लिए आज्ञाकारिता से ही हमारे लिए संभव है। प्राकृतिक दुनिया की तरह आध्यात्मिक में परमेश्वर के नियमों को पालन करना फल देने की स्थिति है, और जब लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करना सिखाते हैं तो वे उन्हें उसकी महिमा के लिए फल देने से रोक रहे हैं। वे प्रभु से अपनी दाख की बारी के फल को वापस लेने के लिए दोषी है। हमारे लिए ईश्वर के दत्त मास्टर की बोली पर आते हैं। वे मांग करते हैं जैसे कि मसीह परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। वे दाख की बारी के फल, प्रेम के फल और विनम्रता और आत्मत्याग को सेवा के लिए अपना दावा पेश करते हैं। यहूदी नेताओं की तरह क्या दाख की बारी के कई काश्तकार गुस्से में नहीं थे जब लोगों के सामने परमेश्वर के नियम का दावा किया जाता है? तो क्या ये शिक्षक इसे अस्वीकार करने के लिए अग्रणी पुरुषों में अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करते हैं? ऐसे शिक्षक ईश्वर को वैफा नौकर कहते हैं। प्राचीन इसराइल के लिए ईश्वर के वचन आज कलीसिया और उसके नेताओं के लिए एक चेतावनी है। इसराइल में से यहोवा ने कहा, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। होशे 8:12। और याजकों को और शिक्षकों को उसने घोषणा की,
मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए हैं, मैं भी बच्चों को भुला दूंगा। क्या ईश्वर द्वारा दी गई चेतावनियों को अनसुना करके पारित किया जाना चाहिए? क्या सेवा के अक्सर होंगे? दुनिया का तिरस्कार कारण की सवारी, मानवीय रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुरूप मसीह की सेवा से लेकर उसके प्रति अनुगामी अनुयायियों को पकड़ेगे? क्या वे परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि यहूदी नेताओं ने मसीह को अस्वीकार कर दिया था? इज़राइल के पाप का नतीजा हमारे सामने है। क्या आज की कलीसिया चेतावनी लेगी? और यदि किसी ने कुछ डालियों को तोड़ दिया और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो तू डालियों पर घमंड न कर। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं साटा जाऊं। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गईं, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। इसलिए अभिमानी न हो, परंतु भय कर, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों न छोड़ी तो तुझे भी न छोड़ेगा। रोमियो 11 आयत 17 से 21।